जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सद ग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ, ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग।
ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, ब्रह्म रूपी समुद्र में जगत रूपी तरंग उठते और लय होते हैं। ऐसे जानने वाला जो ज्ञानवान हो उसको यह जगत आनंददायक कैसे हो? सूर्य, चंद्रमा, अग्नि जो तुमको प्रकाशित भासते हैं, वे भी घट काष्ठ के आदिकवत जड़ रूप है, और जिससे यह प्रकाशते हैं वह सबको सिद्ध करता आत्मसत्ता है और कोई नहीं। देह जो रुधिर, मांस और अस्थि से बना है और इंद्रियों से वेष्टित है, उस देह रूपी डिब्बे में चेतन जीव रूपी रत्न विराजता है। चेतन बिना जड़ मुक्त रूप है। हे रामचंद्र जी, जैसे वायु के चलने से पर्वत चलायमान नहीं होता, तैसे ही ज्ञानवान संसार के पदार्थों से प्रसन्न नहीं होता। ज्ञानवान उस उत्तम पद में विराजता है जिसकी अपेक्षा से चंद्रमा और सूर्य पाताल में भासते हैं, अर्थात इनका बड़ा प्रकाश भी तुच्छ भासता है। ज्ञानवान परम उत्तम पद में विराजते हैं। यह संसारी मूढ़ जीव संसार समुद्र में सर्प किनाई बह जाते हैं। जैसे ये हमको भासते हैं तैसे कहते हैं। इस जगत में ऐसा भाव पदार्थ कोई नहीं जो ज्ञानवान को राग से रंजित करे। जैसे राजा के ग्रह में महासुंदर विचित्र रूप रानियां हो तो उनके ग्राम की मूढ़ नीच स्त्रियां प्रसन्न नहीं कर सकती, तैसे ये जगत के भाव पदार्थ तत्ववेत्ता को प्रसन्न नहीं कर सकते और उसके चित्त में प्रवेश नहीं करते। जैसे आकाश में मेघ रहते हैं परंतु आकाश को स्पर्श नहीं कर सकते, तैसे ही वे निर्लेप हैं। हे रामचंद्र जी, जैसे जल से पूर्ण कुंभ में रत्न का प्रतिबिंब देख के बुद्धिमान का चित्त उसे ग्रहण नहीं करता, तैसे ही ज्ञानवान का चित्त जगत के पदार्थों को नहीं चाहता। यह संसार चक्र जो बड़ा विस्तार रूप भासता है सो असत्य रूप है, उसको देख के ज्ञानवान कैसे इच्छा करे, क्योंकि यह तो चंद्रमा के प्रतिबिंबवत है। शरीर भी असत्य है, इसकी इच्छा मूढ़ करते हैं। जैसे सेवार को मच्छ भोजन करते हैं और राजहंस नहीं करते हैं, तैसे ही अज्ञानी संसार के विषयों की इच्छा करते हैं परंतु ज्ञानवान नहीं करते। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 252। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह सब जगत आत्मरूप है। सब जगत अकारण और आत्मा का आभास है, कारण से कुछ नहीं बना। अनंत ब्रह्म सत्ता ब्रह्मानंद में आभास जगत रूप है। वे अज्ञानी को कार्य कारण सहित प्रतीत होते हैं, उसमें नीति हुई है, पर जब जाग कर देखोगे तब सब अद्वैत रूप देखेगा। न कोई नीति है और न जगत है। जब तक जीव अज्ञान निद्रा में सोया हुआ है तब तक जो पदार्थ उस सृष्टि में है वही दिखेगा और जैसा कर्म है वही भासित होगा। यह जगत एक स्वप्न है जिसमें स्वर्गादिक इष्ट पदार्थ और नरक आदिक अनिष्ट पदार्थ है और उनके प्राप्त होने का साधन धर्म तथा अधर्म है। धर्म स्वर्ग सुख का और अधर्म नरक दुख का साधन है। जब तक अविद्या रूपी निद्रा में जीव सोया हुआ है तब तक इनको यथार्थ जानता है, पर जब जागेगा तब सब आत्मरूप होगा, इष्ट अनिष्ट कोई न रहेगा। यह सब जगत अनुभव रूप है और अनुभव सदा जागृत ज्योति है, उसी को जानो। जिन पुरुषों ने इस अनुभव को नहीं जाना वे उन्मत्त पशु हैं, क्योंकि वे आत्मबोध से शून्य हैं। वे सदा समीपवर्ती आत्मा को नहीं जानते, इससे उन्मत्त है, क्योंकि उन्मत्त को भी अपना आपा भूल जाता है। जैसे किसी को पिशाच लगता है तब उसको अपना स्वरूप भूल जाता है और पिशाच ही देह में बोलता है, वैसे ही जिसको अज्ञान रूपी भूत लगता है वह उन्मत्त हो जाता है, आत्मस्वरूप को नहीं जानता। वह विपर्य बुद्धि से देहादि को आत्मा जानता है और विपर्य शब्द करता है। जिनको स्वरूप में अहम प्रतीति है उनको सब जगत आत्मरूप दिखता है। हे रामचंद्र जी, आदि सृष्टि किसी कारण से बनी होती तो उसके पीछे प्रलय आदि में कुछ शेष रहता, पर वह अत्यंत अभाव होती है, इसलिए सब जगत कारण है। जैसे चिंतामणि से अकारण पदार्थ दिखता है वैसे ही यह अकारण है, न कहीं संस्कार है न स्मृति है, सब आत्मा के पर्याय है, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। इसे सब जगत को तुम आत्मरूप जानो। राम जी ने पूछा, हे भगवान, जो संस्कार से अनुभव न होता और अनुभव से स्मृति न होती तो इस प्रकार प्रसिद्ध क्यों दिखते हैं? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, तुम्हारा यह संशय भी दूर करता हूं। जैसे हाथी के बालक को मारने में सिंह को कुछ यत्न नहीं करना पड़ता, वैसे इस संशय का नाश करने में मुझे कुछ यत्न नहीं करना पड़ता। जैसे सूर्य के उदय हुए तिमिर का अभाव हो जाता है, वैसे ही मेरे वचनों से तुम्हारा संशय दूर हो जाएगा। हे रामचंद्र जी, यह सब जगत चिन्मात्र स्वरूप है, इससे भिन्न नहीं। जैसे खंभे में शिल्पी पुतलियों की कल्पना करता है परंतु पुतलियां कुछ नहीं बनी, उसके मन में पुतलियों का आकार है, वैसे ही आत्मरूपी खंभे में चित्ररूपी शिल्पी पुतलियों की कल्पना करता है। हे राघव, खंभे में पुतलियां निकालते हैं तभी निकलती है, परंतु आत्मा तो अद्वैत और निराकार है, उसमें और कुछ नहीं निकलता, उसमें वाणी की भी गति नहीं, वह चिन्मात्र है, वह चैतन्य मात्र है। अहम के फुरने से वह अपने को चैतन्य जानता है और फिर आगे शब्दों के अर्थ की कल्पना करता है। अपने को शुद्ध अधिष्ठान चैतन्य जानना ही ज्ञान है। ईश्वर, जीव, ब्रह्मा, इंद्र, वरुण, कुबेर, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, देश, काल इत्यादि शब्द और अर्थ सूरण ही में हुए हैं। जैसे एक ही समुद्र में द्रवता से आवर्त तरंग, फेन और बुलबुले आदि नाम होते हैं, वैसे ही सब ब्रह्म ही के नाम है, ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं, ब्रह्म ही अपने आप में स्थित है। वह फूरने से जगत आकार होकर भासता है और फूरने से रहित होने पर जगत आकार मिट जाता है, परंतु फूरने में और न फूरने में ब्रह्म ज्यों का त्यों है। जैसे स्पंदन और निस्पंदन में वायु ज्यों की त्यों है और सब पदार्थ जो दिखते हैं वे ब्रह्म स्वरूप है, जैसे स्वप्न में अपना ही अनुभव, पहाड़ वृक्ष आदि नाना प्रकार का जगत होकर भासता है, वैसे ही ब्रह्म सत्ता ही जागृत जगत रूप होकर दिखती है। वही कहीं अंतवाहक, कहीं आदि भौतिक, कहीं ईश्वर और कहीं जीव आदि होकर भासित होती है। इससे लेकर शब्द अर्थ संयुक्त जो जीव प्रकट होता गया है वह ब्रह्म सत्ता ही इस प्रकार स्थित हुई है। जैसे खंभे में पुतलियां खंभ रूप होती है, वैसे ही आत्मा आकाश में जगत आत्म रूप है, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। जैसे उसमें जगत आभास है, वैसे ही स्मृति अनुभव भी आभास है। स्मृति जो संस्कार है, उससे जगत की उत्पत्ति तब कहिए जब स्मृति आभास न हो। स्मृति संस्कार भी तो आभास है, फिर वह जगत का कारण कैसे हो सकती है? स्मृति भी तब होती है जब प्रथम जगत होता है। जब जगत ही नहीं तो स्मृति कैसे हो? इससे जगत आभास मात्र है, इसका कारण कोई नहीं। हे रामचंद्र जी, स्मृति संस्कार जगत का कारण तब हो जब कुछ जगत आगे हुआ हो, सो तो कुछ हुआ नहीं। और अनुभव उसका होता है जो पदार्थ भासित होता है, सो इस जगत के आदि में कुछ जगत का अंश न था, फिर अनुभव कैसे कहूं? जो अनुभव ही न हुआ हो तो स्मृति किसको हो? और जब स्मृति न हुई तो फिर उससे जगत कैसे कहूं? इसलिए हे रामचंद्र जी, आदि जगत अकारण अकस्मात उपजा है। जैसे रत्न की चमक होती है, वैसे ही जगत है। यह पीछे से कारण कार्य रूप भासित होता है। इससे हे रामचंद्र जी, जिसका कारण कोई न हो उसे जानिए कि उपजा नहीं। वह जिसमें दिखता है वही रूप है, अधिष्ठान से भिन्न कुछ नहीं। सब जगत ब्रह्म स्वरूप है। स्मृति भी भ्रम से आभास जगा है और अनुभव भी आभास है, सो ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं। और आभास भी कुछ उपजा नहीं, आभास की नहीं जगत दिखता है। आत्मसत्ता अद्वैत है, जिसमें आभास स्मृति अनुभव जागृत और स्वप्न की कल्पना कुछ नहीं तो क्या कहें? ब्रह्म ही है। फुरना जिसे कहते हैं वह कुछ वस्तु नहीं है। जैसे खंभे में शिल्पी पुतलियों की कल्पना करता है, वैसे ही स्पंदन चैतन्य आत्मा में जगत की कल्पना करता है। शिल्पी तो आप भिन्न होकर कल्पना करता है, और यह चित्त सत्ता ऐसी है कि अपने ही स्वरूप में कल्पना करती है और जगत रूपी पुतलियां देखती है। आत्मा आकाश रूपी खंभा है, उसमें जगत ही आकाश रूपी पुतलियां है। जैसे आकाश अपने आकाश भाव में स्थित है, वैसे ही ब्रह्म अपने ब्रह्म भाव में स्थित है। जगत भिन्न भी दिखता है परंतु अचेत चिन्मात्र स्वरूप है, भेदभाव को नहीं प्राप्त हुआ। और विकारवान भी दिखता है परंतु विकार नहीं हुआ। जैसे स्वप्न में जीव आप ही सब स्पष्ट दिखते हैं, वैसे यह जगत अपने आप में दिखता है परंतु कुछ नहीं है। हे रामचंद्र जी, यही आश्चर्य है कि मैंने अपने अनुभव को प्रकट करके उपदेश किया है। जीव आप भी जानते हैं, स्वप्न में नित्य देखते हैं और सुनते भी है, परंतु निश्चय करके जान नहीं सकते और स्वप्न के पदार्थ को मूर्खता से त्याग नहीं सकते। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जो पुरुष इंद्रियों के इष्ट विषयों को पाकर सुख नहीं मानता और अनिष्ट विषयों को पाकर दुख नहीं मानता, इनके भ्रम से मुक्त है और बड़े भोग प्राप्त हो तो भी अपने स्वरूप से चलायमान नहीं होता, उसको जीवन मुक्त जानो। हे रामचंद्र जी, सब शब्द अर्थ जिसको द्वैत रूप नहीं दिखते उसे तुम जीवन मुक्त जानो। जिस अविद्या रूपी जागृत में अज्ञानी जागते हैं उसमें ज्ञानी सो रहे हैं, और परमार्थ रूपी जागृत में अज्ञानी सो रहे हैं, वे नहीं जानते कि परमार्थ क्या है, परंतु उसमें जीवन मुक्त स्थित है। इस कारण ज्ञानवान इष्ट अनिष्ट विषयों को पाकर सुखी और दुखी नहीं होते, उनका चित्त सदा आत्म पद में स्थित है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, जो पुरुष सुख पाकर सुखी और दुख से दुखी नहीं होता वह तो जड़ हुआ, चैतन्य तो न हुआ। वशिष्ठ जी बोले, हे राघव, सुख दुख तब होता है जब तक चित्त को जगत का संबंध होता है। जब चित्त जगत के संबंध से रहित चिन्मात्र होता है तब उपाधिकृत सुख दुख नहीं रहते। जो अपने स्वभाव में स्थित पुरुष है वे परम विश्राम को पाते हैं और सब कुछ करते हैं, परंतु स्वरूप से उनको कर्तव्य का उत्थान कुछ नहीं होता और सदा अद्वैत में निश्चय रहता है। नेत्रों से वे देखते हैं परंतु द्वैत की भावना उनको नहीं फुरती। जैसे अत्यंत उत्तम को सब पदार्थ दिखते हैं परंतु सब पदार्थों का ज्ञान नहीं होता, वैसे ही जिसकी बुद्धि अद्वैत में दृढ़ हो गई है उसे द्वैत रूप पदार्थ नहीं भासित होते। जिनको द्वैत नहीं दिखता उनको सुख दुख कैसे लगे? उन पुरुषों ने वहां विश्राम किया है जहां न जागृत है न स्वप्न है और न सुषुप्ति है। वे सब द्वैत से रहित अद्वैत रूपी शैया में विश्राम कर रहे हैं और संसार मार्ग को लांग गए हैं। आत्मा के प्रमाद से जीव को कष्ट होता है। जो अपनी विभूति विद्या को त्याग कर प्रसन्न होता है और फिर संसार के क्रूर मार्ग में कष्ट पाता है वह मनुष्य नहीं मानो मृग है। वह संसार रूपी वन में भटकता कष्ट पाता है। जब प्यास से व्याकुल होता है तब जल की ओर दौड़ता है, पर जहां जाता है वहां मरुस्थल की नदी मृग मरीचिका ही दिखती है, जल नहीं प्राप्त होता। तब आगे दौड़ता है और प्यास अधिक बढ़ती जाती है। इस प्रकार दौड़ता दौड़ता जड़ हो जाता है और दुखी होकर मर जाता है, परंतु उसे जल नहीं प्राप्त होता। यह जल, दौड़ना, जड़ता और मरना चारों अलग अलग सुनो। हे रामचंद्र जी, मन ही मृग है जो संसार रूपी वन में आ पड़ा है। यह इंद्रियों के विषय रूपी जलाभास को सत्य जानकर शांति के लिए तृष्णा रूपी मार्ग में दौड़ता है, पर वे विषय आभास मात्र है और उनमें शांति रूपी जल नहीं है। इसलिए वह दौड़ता दौड़ता जब वृद्ध अवस्था में पड़ता है तब जड़ होकर बड़े कष्ट को प्राप्त होता है, पर शांति रूपी जल नहीं पाता, इससे तृप्त भी नहीं होता। हे रामचंद्र जी, मनुष्य मानो मजदूर है जिसके सिर पर बड़ा भार है। वह अटपटे मार्ग में चला जाता है जहां उसको चोर ने लूट लिया है, इससे दुखी होता है। हे रामचंद्र जी, मनुष्य रूपी मजदूर के शीश पर जन्म का बड़ा भार है। यह संशय रूपी अटपटे मार्ग में खड़ा है। कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों के इष्ट अनिष्ट विषय है इनसे राग द्वेष रूपी चोर ने विचार रूपी धन हर लिया है। इससे वह राग द्वेष और तृष्णा रूपी अग्नि से जलता है। बड़ा आश्चर्य है कि ज्ञानी लोग ऐसे कुमार्ग को त्याग कर उन्होंने परमपद में विश्राम पाया है और अन्य आनंद को त्याग कर परमपद को यानी परमानंद को प्राप्त हुए हैं। उन मुक्त पुरुषों को संसार का सुख दुख व्याप नहीं सकता क्योंकि वे परम अद्वैत शुद्ध सत्ता को प्राप्त हुए हैं। वे सबको देखते हैं। ग्रहण त्याग रूपी अग्नि को त्याग कर उन्होंने परम पद में विश्राम पाया है और सदा उसी में सोए रहते हैं। वास्तव में सुख से वे ही सोते हैं और उनके भीतर सदा शांति रहती है, परंतु वे जड़ता से रहित है और आकाश से भी अधिक सूक्ष्म सत्ता को प्राप्त हुए हैं। जैसे समुद्र में धूल नहीं होती और सूर्य में अंधकार नहीं होता, वैसे ही उनमें इंद्रियों के इष्ट विषयों की तृष्णा नहीं होती। उन विषयों से रहित होकर उन्होंने विश्राम पाया है। यह आश्चर्य है कि अणु से अणु और महत से महत होकर भी वे केवल विश्राम को प्राप्त हुए हैं। हे रामचंद्र जी, आत्मसत्ता की ओर से सोए पड़े हैं, उनको दुख होता है, पर ज्ञानवान द्वैत जगत की ओर जड़ हुए हैं और अपने स्वरूप में स्थित है, इससे उनको दुख कुछ नहीं। वे जागृत की ओर से सोए हैं। उनका विद्याकृत जगत और दृश्य का संबंध दूर हो गया है। जब वे इस ओर से सोए हैं तो उनको फिर दुख कैसे हो। वे पुरुष सदा अद्वैत रूप है। वे अनंत जगत के कर्ता है और अपने को सदा अकर्ता जानते हैं। ऐसे आश्चर्य पद में उन्होंने विश्राम पाया है। जगत के समूह सत्ता समान में स्थित होकर उन्होंने विश्राम पाया है, यह आश्चर्य है। वे सब क्रिया करते हैं परंतु सदा अक्रिय पद में स्थित है और संपूर्ण पदार्थों को स्वप्नवत जानकर सुषुप्त हुए हैं। वे आकाश से भी अधिक सूक्ष्म है क्योंकि आत्मसत्ता में विश्राम पाया है। वह आत्मसत्ता आकाश को भी व्याप रही है, उसी को आत्मवत जानकर वे स्थित हुए हैं। जो परम स्वच्छ पद है उसमें सब शब्द अर्थ आकाश रूप हो जाते हैं और आकाश भी आकाश हो जाता है। उस पद में उन्होंने विश्राम पाया है, यही आश्चर्य है। नेत्र उनके खुले हुए हैं पर सुषुप्ति में स्थित है। ऐसी सुषुप्ति है कि उनका दृग और दृश्य भाव दूर हो गया है। वे जगत के प्रकाश से रहित और परम प्रकाश रूप है। हे रामचंद्र जी, वे बाहर के भोग्य पदार्थों से रहित है और आत्मा में स्थित हुए हैं। प्रकट में वे सोते हैं पर सुषुप्ति में जागते हैं और जागृत से उनको सुषुप्ति है। उस सुषुप्ति से वे सोए हैं और कर्म करते हैं परंतु कर्ता कारण भाव से वे रहित हैं। क्रोध भी करते हैं परंतु क्रोध के स्फुरण से रहित हैं। सब ओर से प्रकाशवान निर्भय होकर विश्राम करते हैं। कामना करते भी दिखते हैं परंतु तृष्णा से रहित है और निसंकल्प पद में स्थित हुए हैं। यह आश्चर्य है कि जिस क्रिया की ओर वे देखते हैं उसी ओर उनको शांति दिखती है, क्योंकि एक मित्र उनके साथ रहता है, इससे कोई दुख उनके निकट नहीं आता। श्री राम जी ने पूछा, हे भगवान, वह मित्र कौन है? ज्ञानी का कोई कर्म मित्र है अथवा आत्मा में विश्राम का नाम मित्र है, यह आप संक्षेप में मुझसे कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, निष्काम कर्म ही वह अपना मित्र है, अर्थात अपना ही प्रयत्न उनका मित्र है। आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक ये तीनों ताप सदा अज्ञानी को जलाते हैं, पर ज्ञानी को नहीं। जो बड़ा कष्ट और बहुत कोप भी उनको स्पर्श नहीं करता, जैसे कमल को जल नहीं स्पर्श करता, वैसे ही ज्ञानी को कष्ट नहीं स्पर्श करता, क्योंकि वह मित्र उनके साथ रहता है। जैसे बालक का मित्र बालक होता है, सो बड़े होने पर भी उसका हेतु रहता है, वैसे ही चिरकाल से ज्ञानवान ने जो अभ्यास किया है वही उसका मित्र होकर साथ देता है और दुष्ट क्रिया की ओर उसे नहीं प्रवृत्त होने देता, शुभ कर्म की ओर ही प्रवृत्त करता है। जैसे पिता पुत्र को अशुभ की ओर से बरज कर शुभ की ओर लगाता है, वैसे ही विचार रूपी मित्र उसको तृष्णा से वर्जन करता है और आत्मा की ओर लगाता है। वह राग द्वेष रूपी अग्नि से निकलकर समता रूपी शीतलता उसे देता है। ऐसा विचार रूपी उसका मित्र उसे सब दुख क्लेश आदि से उबार लेता है, जैसे मल्लाह नदी के पार ले जाता है। हे रामचंद्र जी, विचार रूपी मित्र बहुत सुंदर है, शांत रूप है, वह सब मल को जलाने वाली अग्नि है। जैसे अग्नि सुवर्ण के मैल को जलाकर उसे निर्मल बनाती है, वैसे ही विचार रूपी अग्नि राग द्वेष रूपी मल को जलाती है। जब विचार रूपी मित्र आता है, तब स्वाभाविक चेष्टा निर्मल हो जाती है और वह वेदोक्त मार्ग में विचरता है। तब सब कोई उसको देखकर प्रसन्न होते हैं और दया, कोमलता, अमान और अक्रोध आदि गुण उसे प्राप्त होते हैं। जैसे तिलों में तेल, फूलों में सुगंध और अग्नि में गर्मी रहती है, वैसे ही विचार में शुभ आचार रहते हैं। विचार रूपी मित्र शूर है। जो कोई शत्रु होता है उसको वह पहले मारता है और अज्ञान रूपी शत्रु का नाश करता है, जैसे सूर्य तम का नाश करता है। फिर वह दीपक के प्रकाश सा साथ होता है, विषय भोग रूपी अंधे कूप में गिरने नहीं देता और सब ओर से रक्षा करता है। जिस ओर वह पुरुष जाता है उस ओर सबको प्रसन्नता होती है। हे रामचंद्र जी, उसकी वाणी कोमल, मधुर और स्निग्ध होती है। वह उदाराशय क्षोभ से रहित होकर लोगों का उपकार करता है और वाणी से सबको प्रसन्न रखता है। वह सौहार्द, शांति और परमार्थ का कारण है। हे रामचंद्र जी, वचन तो उसके प्रसन्नता के लिए होते हैं और वह आप भी सदा प्रसन्न रहता है। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने भर्ता को सदा प्रसन्न रखती है, वैसे ही विचार रूपी मित्र उसको सदा प्रसन्न रखता है और शुभ आचार में चलाता है। दान, तप, यज्ञ आदि शुभ कर्म वह आप भी करता है और लोगों से भी कराता है। जब अंतःकरण में विवेक रूपी मंत्री आता है, तब वह वहां अपने परिवार को भी साथ ले आता है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, उसका परिवार कौन है, उसका स्वरूप और आचार क्या है, संक्षेप से कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, स्नान, दान, तपस्या, ध्यान, ये चारों उसके बेटे हैं। स्नान यह है कि सदा पवित्र रहे, यथा योग्य यथा शक्ति दान करे, यह दान है। बाहर की वृत्ति को भीतर स्थित करने का नाम तप और आत्मा में चित्त वृत्ति लगाने का नाम ध्यान है। ये चारों उसके बेटे हैं। यह आत्मदर्शी है, परंतु वृत्ति को सदा स्वाभाविक अंतर्मुख करके व्यवहार करते हैं। मुदिता उसकी स्त्री है। सदा प्रसन्न रहने का नाम मुदिता है, जो वंदनीय है। जैसे द्वितीया के चंद्रमा की रेखा को देखकर सब प्रसन्न होते हैं और नमस्कार करते हैं, वैसे ही उसको देखकर सब प्रसन्न होते हैं और नमस्कार करते हैं। मुदिता रूपी स्त्री के साथ करुणा और दया नाम की एक सहेली रहती है। समता रूपी द्वारपालनी सम्मुख खड़ी रहती है। जब विवेक राजा अंतःपुर में आता है, तब वह सम्मुख होकर सब स्थान दिखाती है और सदा साथ चलती है। जिस ओर राजा देखता है, उस ओर समता ही देख पड़ती है। जो आनंद उपजाने वाली है, वह धैर्य और धर्म नाम के दो पुत्र साथ लेकर पुरी में विचरती है और जिस ओर राजा भेजता है, उस ओर उन्हें लिए फिरती है। जब राजा सवार होकर चलता है, तब वह भी समता रूपी वाहन पर चढ़कर राजा के साथ जाती है। जब राजा विषय रूपी पांचों शत्रुओं से लड़ाई करता है, तब धैर्य और संतोष मंत्री मंत्र देते हैं और विचार रूपी बाण से उनको नष्ट करते हैं। हे रामचंद्र जी, विचार सदा उसके संग रहता है और सब कार्य करता है। यह चेष्टा उसकी स्वाभाविक होती है। वह आप सदा अमान रहता है। उसको कर्तृत्व भोक्तृत्व का अभिमान नहीं फुरता। जैसे कागज पर लिखी हुई मूर्ति अभिमान से रहित होती है, वैसे ही वह भी अभिमान से रहित है और परमार्थ निरूपण से रहित निरर्थक वचन नहीं बोलता। जैसे पत्थर कुछ नहीं सुनता कहता। जिस क्रिया का शास्त्रों और लोगों ने निषेध किया है, उसे नहीं करता। जैसे शव कुछ क्रिया नहीं करता, वैसे ही उसको क्रिया का उत्थान नहीं होता। जहां ज्ञानियों और जिज्ञासुओं की सभा होती है, वहां वह शेषनाग और बृहस्पति की तरह परमार्थ का निरूपण करता है। सावधानता इत्यादि शुभ क्रियाएं उसमें स्वाभाविक होती है। जैसे सूर्य चंद्रमा और अग्नि में प्रकाश स्वाभाविक होता है, वैसे ही उसमें शुभ क्रियाएं स्वाभाविक होती है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह जगत वास्तव में ज्ञान स्वरूप और आत्मसत्ता का चमत्कार है और कुछ नहीं बना। ब्रह्म सत्ता ही फूरने से इस प्रकार होकर भासित होता है। इसका कारण भी कोई नहीं। जब महाप्रलय था, तब शब्द अर्थ द्वैत कुछ न था। उस अद्वैत सत्ता से जगत प्रकट हुआ है। जैसे बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है, वह बीज भी जगत का कोई न था, तो किस कारण से वह उत्पन्न हुआ? और तो कोई कारण न था। इससे अब भी जगत को महाप्रलय रूप ही जानो। हे रामचंद्र जी, न कोई पृथ्वी आदि तत्व है, न जगत है, न आभास है और न सृष्टि है। जैसे आकाश के फूलों में सुगंध नहीं होती, वैसे ही इनका होना भी नहीं है। केवल स्वच्छ ब्रह्म सत्ता अपने आप में स्थित है। रूप, इंद्रिया और मन भी ब्रह्म स्वरूप है। जैसे स्वप्न में अपना अनुभव है और मन ही नाना प्रकार का जगत और इंद्रिया होकर दिखता है और कुछ नहीं, वैसे यह जगत भी वही रूप है। हे राघव, सब जगत आत्मरूप है। जैसे कारण बिना आकाश में दूसरा चंद्रमा दिखता है, सो वास्तव में है नहीं, वैसे यह जगत आत्मा का आभास है और जिसमें यह आभास प्रकट हुआ है, वह अधिष्ठान ब्रह्म सत्ता है। यह सब पदार्थ जो तुमको दिखते हैं उन्हें ब्रह्म स्वरूप जानो। जैसे मनोराज्य की सृष्टि अपने अनुभव में होती है और उसका स्वरूप अनुभव से भिन्न नहीं होता, वैसे ही सृष्टि के आदि में जो अनुभव होता है वह अनुभव रूप है और कुछ उपजा नहीं, वही अनुभव सत्ता इस प्रकार भासित होती है। हे राघव, देश से देशांतर को जो संवित प्राप्त होती है उसमें जो अनुभव है वही तुम्हारा स्वरूप है और सब आभास मात्र है। जागृत देश को त्याग कर जो स्वप्न शरीर के साथ नहीं मिली और जागृत स्वप्न देश के मध्य में जो ब्रह्म सत्ता है वही तुम्हारा स्वरूप है। वह प्रकाश रूप और अपने आप में स्थित है। जागृत जगत जो दिखता है वह उसी का स्वभाव है। जैसे रत्नों का स्वभाव चमकना है, अग्नि का स्वभाव उष्णता है, जल का स्वभाव द्रव है और पवन का स्वभाव चलना है, वैसे ही ब्रह्म का स्वभाव जगत है। जैसे सूर्य की किरणों में जल दिखता है वैसे ही आत्मा में जगत दिखता है। हे रामचंद्र जी, यह आश्चर्य है कि अज्ञानी सत्य को असत्य और असत्य को सत्य जानते हैं। जो अनुभव सत्ता है उसको छिपाते हैं और खरगोश के सिंह सरीखे जगत को प्रत्यक्ष जानते हैं। वे मूर्ख हैं। सबका प्रकाशक आत्म सत्ता है। जिसको तुम सूर्य देखते हो वही परमदेव सूर्य होकर दिखता है। चंद्रमा और अग्नि उसी के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। निदान सबका प्रकाश और तेज सत्ता वही है। जैसे सूर्य की किरणों में सूक्ष्म अणु होते हैं वैसे ही आत्मसत्ता में सूर्य आदि दिखते हैं। जिनको साकार और निराकार कहते हो वह सब खरगोश के सिंह से है। ज्ञानवान को ऐसे दिखता है कि जगत कुछ उपजा नहीं तो मैं क्या कहूं। जहां सब शब्दों का अभाव हो जाता है और उसके पीछे चिन्मात्र सत्ता शेष रहती है वहां शून्य का भी अभाव हो जाता है। हे रामचंद्र जी, जिसको तुम जीता कहते हो उनमें जीता भी कोई नहीं और जो जीता नहीं तो मरा कैसे हो। जो कहिए जीता है तो जैसे जीता है वैसे ही मृतक है। मृतक और जीते में कुछ भेद नहीं, इसलिए सब शब्दों से रहित और सबका अधिष्ठान वही सत्ता है।
हरि ओम, हरि ओम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।